समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे और आज जो दो राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं उनके नतीजों पर भी रहेगी हमारी नजर। इसके अलावा हम चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या फिर जन्मदिवस। परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं मुदिता और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो मुदिता, हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून इन टू एफएम गोल्ड ऑन परिक्रमा ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को होस्ट मुदिता। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। Let's begin with the news headlines first. BJP-led Mahayuti Alliance heads for a landslide victory in Maharashtra. JMM-led INDIA bloc set to retain power in Jharkhand.
महाराष्ट्र में प्रमुख उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार आगे, जबकि एनसीपी के नवाब मलिक और जीशान बाबा सिद्दीकी तथा कांग्रेस के बाला साहिब थोराट और पृथ्वीराज चव्हाण पीछे।
In Jharkhand, Chief Minister Hemant Soren, Babulal Marandi, Champai Soren, among prominent leading candidates, Kalpana Soren trails.
Congress neta Priyanka Gandhi Vadra ne Wayanad Lok Sabha upchunav mein bhari badhat ki aur Nanded Lok Sabha seat par Bhajpa aage.
In 46 assembly by-polls, BJP ahead in 6 out of 9 seats in UP and 4 out of 7 seats in Rajasthan. TMC has won all the 6 seats in West Bengal. And in Punjab, ruling AAP has bagged 3 and Congress 1 seat.
America ke navnirvachit Rashtrapati Donald Trump ne Scott Bessent ko apna vitt mantri namit kiya.
And now Mudita, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about the 55th International Film Festival. Well, the 55th International Film Festival of India has made significant strides in ensuring accessibility and inclusivity for all. At a press conference on accessibility at IFFI, Prithul Kumar, Joint Secretary, Broadcasting, Ministry of Information and Broadcasting and Managing Director, NFDC, Taha I. Haziq, Secretary, State Commission for Persons with Disabilities, Goa, and Vandana Bhulchand, Head of Swayam, highlighted the transformative steps taken to make the festival a model of inclusivity.
55वां इफ्फी सबका मनोरंजन थीम के तहत सांकेतिक भाषा की व्याख्या, फिल्मों की सुलभ स्क्रीनिंग, बाधा मुक्त कार्यक्रम स्थल, संवेदनशीलता प्रशिक्षित कर्मचारी और मूवी बफ ऐप जैसे डिजिटल टूल जैसी समावेशिता पहल पेश करता है जो सभी के लिए एक स्वागत योग्य सिनेमाई अनुभव सुनिश्चित करता है। प्रिथुल कुमार ने महोत्सव की समावेशी पहल पर विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा, इस साल इफ्फी में पहुंच का स्तर बढ़ाया गया है। प्रशिक्षित स्वयंसेवकों और संवेदनशील अधिकारियों से लेकर विकलांग व्यक्तियों के लिए 6 फिल्मों का एक समर्पित खंड और 11 अन्य फिल्मों तक हमने सुलभ पहुंच को मूल में समाहित कर लिया है। उन्होंने सिनेमा को और अधिक समावेशी बनाने के लिए मनोरंजन उद्योग के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए समावेशिता के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने इस तरह की समावेशिता के साथ कार्यक्रम की मेजबानी के लिए गोवा सरकार और एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के प्रयासों की सराहना की।
Yes, and Taha I. Haziq emphasized Goa's pioneering role in accessibility initiatives. He said if he has truly embodied the spirit of Sabka Manoranjan, from RAMS and live sign language interpretation to the screening of accessible films like 12th Fail, we are ensuring that the festival is for everyone. He noted that the production houses and OTT platforms are also progressively moving forward in adoption and accessibility features. He also commended the accessible infrastructure, availability of accessible e-rickshaws and wheelchairs for specially abled and well-trained volunteers, and accessible websites during IFE 2024. He affirmed Goa's commitment to becoming a model state for accessibility.
वन्ना बुलचंद ने एक्सेसिबिलिटी ऑडिट और प्रशिक्षण आयोजित करने में स्वयं की भूमिका पर प्रकाश डाला. 55वें IFFI के एक्सेसिबिलिटी पार्टनर के रूप में स्वयं ने महोत्सव को समावेशी बनाने के लिए कई पहलुओं पर काम किया. उन्होंने कहा कि स्वयं की पहल में सोशल मीडिया पोस्ट, वेबसाइट और अन्य संचार सामग्री को कम दृष्टि वाले लोगों के लिए अनुकूल बनाने के लिए NFDC की मीडिया टीम का प्रशिक्षण शामिल है. स्वयं ने स्वयंसेवकों और अधिकारियों को भी प्रशिक्षित किया ताकि उत्सव में भाग लेने वाले दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार सुनिश्चित किया जा सके.
Yes, and Ms. Bhulchand invited the attendees to experience the Tech Pavilion Simulation Zone. And for the first time at IFE, Swayam's Simulation Zone in the Tech Pavilion lets attendees experience the challenges faced by people with disabilities, promoting a deeper understanding of accessibility, inspiring more inclusive and empathic designs in public spaces and interactions.
IFFI उन चार सिनेमाई दिग्गजों को भी सम्मानित कर रहा है जिन्होंने भारतीय सिनेमा पर स्थायी प्रभाव छोड़ा है. इनमें राज कपूर, तपन सिन्हा, अक्किनेनी नागेश्वर राव और मोहम्मद रफी शामिल हैं. इफ्फी 2024 में श्रद्धांजलि, स्क्रीनिंग और इंटरैक्टिव कार्यक्रमों की एक श्रृंखला पेश की गई है जो प्रतिनिधियों को इन प्रतिष्ठित फिल्म हस्तियों के योगदान के बारे में गहराई से जानकारी प्रदान करेगी.
Yes, Mudita, and as part of the celebrations, Raj Kapoor's classic Awara has been showcased in a digitally restored version, highlighting the warmth, human empathy that define Kapoor's portrayal of the common man's journey. The restored Devadasu, which cemented Akineni Nageshwara Rao's place in cinematic history, has been screened. Tapan Sinha's classic Harmonium and the timeless Hum Dono, known for Mohammad Rafi's immortal songs, is also to be part of the lineup.
जी बिल्कुल अभिषेक, और उद्घाटन समारोह में इन दिग्गजों को समर्पित एक विशेष प्रदर्शन के साथ साथ एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया. पूरे उत्सव में पैनल चर्चा, बातचीत सत्र, एक क्यूरेटेड प्रदर्शनी और प्रत्येक कलाकार पर केंद्रित विषयगत गतिविधियां आयोजित की जाएंगी.
Yes, absolutely. And a renowned sand artist and Padma Shri recipient, Sudarshan Patnaik, sculptured a stunning sand art installation at Miramar Beach as part of the 55th IFE celebrations. Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, inaugurated the sand sculpture dedicated to four legendary figures of Indian cinema and music, Akineni Nageshwara Rao, Tapan Sinha and Mohammad Rafi and Raj Kapoor.
डॉक्टर प्रमोद सावंत ने भारतीय सिनेमा के चार दिग्गजों को इतनी रचनात्मक और कलात्मक तरीके से सम्मानित करने के लिए NFDC और सुदर्शन पटनायक के प्रति आभार व्यक्त किया.
सो विद दैट वी एंड द डिस्कशन ऑन IFE 2024.
गोवा में चल रहे 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी ने इस बार समावेशिता को प्राथमिकता देते हुए नई मिसाल कायम की है. इस महोत्सव में दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिनमें सुगम इंफ्रास्ट्रक्चर, फिल्मों में सबटाइटल्स और साइन लैंग्वेज का उपयोग प्रमुख है. दिल्ली से आए दिव्यांग फिल्म लेखक चंदन सिंह ने आकाशवाणी से बातचीत करते हुए समावेशी पहल को सरकार के समान अधिकार और समान अवसर के आदर्श का जीवंत प्रमाण बताया. चंदन ने कहा, इफ्फी जैसे बड़े महोत्सव में दिव्यांगजनों के लिए इस तरह की व्यवस्था सराहनीय है. उन्होंने ये भी बताया कि प्रवेश और टिकट की कीमतों में सब्सिडी ने दिव्यांगजनों के लिए इस पूरे फिल्म महोत्सव को अटेंड करना और भी सुलभ बना दिया है. उन्होंने सरकार और इफ्फी प्रबंधन का धन्यवाद भी व्यक्त किया.
सबसे पहले बताऊंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को और NFDC को थैंक यू बोलना चाहता हूं कि जैसे कि मैं एक दिव्यांग राइटर हूं और जब मैं यहां पर आया तो फिल्म बाजार में भी आया और यहां पर भी आया तो मैंने देखा कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है स्वयं नाम का एक है, उन्होंने डिजेबल के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है. जैसे व्हीलचेयर वगैरह या डिपार्टमेंट ने जितनी भी चीज़ें थी, कहीं भी हमें जाने के लिए आने के लिए ऐसा कोई तकलीफ नहीं हुआ कि हम दिव्यांग हैं, नहीं जा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. और गवर्नमेंट ने भी हमें, जैसे मैं राइटर के लिए अपना सब्मिशन किया तो फीस भी कम लिया गवर्नमेंट ने, और हमें स्पेशली इन्विटेशन दिया कि हम अपनी यहाँ की स्क्रिप्ट सबमिट करें, और ये उनको मौका दिया यहाँ पर गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छी बात है. और जहाँ तक मुझे नहीं लगता था कि हाँ गवर्नमेंट यंग को और डिजेबल पर्सन को कुछ इस तरह की करती है, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा लगा मुझे। इसलिए थैंक यू, मैं अगेन बोलता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट और जितने भी डिपार्टमेंट हैं।
आकाशवाणी से बातचीत करते हुए चंदन सिंह ने बताया कि कैसे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्वयं द्वारा हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है जो उनकी हर जरूरत में सहायता कर रही है।
डिजेबिलिटी असिस्ट के लिए जितने भी, जैसे स्वयं का मैं नाम रख रहा हूँ, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर ये कैंप लगाए हैं विदाउट एनी बेनिफिट के लिए दिव्यांग को, जिसे जो सर्विस मिलनी चाहिए जैसे चलने फिरने के लिए व्हील चेयर वगैरह जो भी चीज हो गई, तो वो सबके लिए सुविधा यहाँ पर फिल्म बाजार में भी रखा गया है और यहाँ पर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी रखा गया है। मैंने स्पेशली उनके काउंटर भी देखे, उनके लोगों ने मुझसे स्पेशल कनेक्ट भी किया कि किसी तरह की दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कीजिए। इसलिए थैंक यू सभी डिपार्टमेंट को और आपके ऑल इंडिया रेडियो को भी, ताकि इन फ्यूचर में अगर कोई डिजेबल पर्सन अगर आने की कोशिश करता है तो ये ना सोचे कि मैं दिव्यांग हूँ जाऊंगा तो सरकार हमारी ध्यान रखेगी कि नहीं रखेगी। तो मैं कहना चाहूंगा कि स्पेशल हर कोई आए।
इस वर्ष अपने 55वें संस्करण में इफ्फी न केवल सिनेमा के माध्यम से मनोरंजन और कला का जश्न मना रहा है बल्कि वह समावेशता और समानता की एक बहुत बड़ी मिसाल भी पेश कर रहा है। आकाशवाणी परिक्रमा के लिए दुर्गेश भदौरिया के साथ ओमवेश उपाध्याय, गोवा।
और अभिषेक, अब हम चलते हैं जहां हमारे श्रोताओं के साथ पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों की मतगणना अभी जारी है और अभी तक प्राप्त नतीजों और रुझानों में महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन भारी जीत की ओर बढ़ रहा है, वहीं झारखंड में झामुमो के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन सत्ता में वापसी की ओर है।
Absolutely. Counting is also underway for bipoll to two Lok Sabha seats, Wayanad and Nanded, and several assembly constituencies in different states. In Wayanad parliamentary constituency of Kerala, Congress leader Priyanka Gandhi Vadra is leading over her nearest rival and CPI candidate Satyan Mokeri by over 4 lakh votes. The election was necessitated in Wayanad after Congress leader Rahul Gandhi won from both Wayanad and Rai Bareli constituencies, however decided to retain the Rai Bareli seat. In Nanded Lok Sabha seat of Maharashtra, BJP candidate Dr. Santuk Rao Hambarde is leading over his Congress rival Ravindra Chavan by over 3 lakh votes. The bipoll was held following the death of the sitting Congress MP Vasant Chavan on the 26th of August this year. In West Bengal, ruling Trinamool Congress has won all 6 seats. In Bihar, the ruling NDA has swept the bipolls to all the 4 assembly segments. Hindustani Awam Morcha, HAM, has won the Imamganj seat. BJP has wrested Ramgar seat and also secured the Tarai seat. JDU has registered win from Belaganj constituency. In Punjab, out of 4 seats, ruling AAP clinched 3, while Congress has bagged 1 seat. In Chhattisgarh, ruling BJP has won the Raipur City South Assembly bipoll. In Karnataka, ruling Congress has won all the 3 seats. In Meghalaya, ruling NPP has grabbed the lone Gambegre seat. In Uttarakhand, Kedarnath assembly seat has gone in favour of BJP. In Assam, bipolls were held on 5 assembly seats. BJP has won from Behali seat. United People's Party Liberal has won the bipoll to Sidli seat. Ohom Gona Parishad has secured the Bongaigaon seat. Counting is underway for 2 assembly seats, Dholai and Samaguri constituencies. Ruling BJP is leading in 2 seats. In Kerala, Congress and the CPIM got 1 seat each. In Gujarat, BJP is leading the lone Bhav assembly seat. In Uttar Pradesh, out of 9 seats, ruling BJP has won 3, while it is leading in 3 others, while its ally RLD is ahead in 1. Samajwadi Party has won 2 seats. In Madhya Pradesh, Congress has registered victory in Vijaypur, while ruling BJP is leading in Budhni. In Rajasthan, out of 7 seats where bipolls were held, ruling BJP has won 4 seats and is leading in 1 seat, while Bharat Adivasi Party has bagged 1 seat, while Congress is ahead at 1. And in Sikkim, 2 ruling SKM candidates have already been declared elected unopposed.
और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की शानदार जीत के बाद नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या है खास।
A revered festival of Odisha, Prathamashtami, a significant festival in the Odia calendar, is celebrated with great enthusiasm and devotion across Odisha today, especially for the prosperity and long life of the eldest child in every household. The unique festival is marked by prayers offered to protect the firstborn from all evils and to ensure the well-being and success throughout life. We have more from a correspondent, Tapan Kumar Maharana.
The festival, which falls on the 8th day of the bright fortnight of the month of Margashira, is dedicated to the worship of Lord Jagannath and his siblings. On the first day, mothers pray for the well-being and long life of their firstborn children. In Puri, the Sri Jagannath temple was also abuzz with devotees, who offered prayers and prasad to the deities. The temple administration had made elaborate arrangements for the festival, including special security arrangements and facilities for devotees. In Bhuvaneswar, devotees thronged the Lingraj temple where special rituals and pujas were performed. In the other parts of the state, including Cuttack, Brahmapur and Sambalpur, Prathamashtami was celebrated with equal favor. Devotees offered prayers at local temples and special pujas were performed in homes. The festival is also marked by the preparation of traditional Odia dishes, including enduri pitha and khiri. Prathamashtami is a unique and fascinating festival that showcases the rich cultural heritage of Odisha. It is a celebration of motherly love, devotion and sacrifice. As the people of Odisha come together to celebrate Prathamashtami, it is a reminder of the importance of family, love and compassion in our life. Tapan Kumar Maharana for Parikrama from Akashvani Cuttack.
और अब चलते हैं लद्दाख की ओर, जहां 76वां कारगिल मुक्त दिवस यौम-ए-फतेह कारगिल में देशभक्ति के उत्साह और भव्यता के साथ मनाया गया। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट।
चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखोन पेड ट्रिब्यूट एट द वॉर मेमोरियल कारगिल बाय लेइंग रीथ अलोंगसाइड डीसी कारगिल श्रीकांत सुसे डिप्टी जीओसी एट माउंटेन डिवीजन ब्रिगेडियर जयदीप चड्डा ब्रिगेडियर प्रतीक परेशर एंड अदर सीनियर आर्मी ऑफिसर्स ऑनरिंग द सेक्रीफाइसेस ऑफ द इंडियन आर्मी The celebration continued at Sri Sultancho Sports Stadium, Byamathang, where Dr. Jafar Akhon, the chief guest, took salute at an impressive march passed by Ladakh police and school students. The event featured vibrant cultural performance by Purgi, Balti and Shina troops, students of JNV Kargil and the Ladakh Scouts Band. Patriotic songs were performed by ex-servicemen Javed, Aliyo and Imtiaz, adding emotional depth to the event. The program was also included martial arts and self-defense demonstration by army jawans and players from the Ladakh Taekwondo Association, leaving the audience in awe. Addressing the gathering, Dr. Mohammad Jafar Akhon congratulated the nation, the people of Kargil and the Indian Army on this significant occasion. He expressed gratitude to the Army for their unyielding vigilance at the frontiers, ensuring peace for citizens across the country. DC Kargil Shrikant Suse, Brigadier Jadeep Chadda, Brigadier Pratik Parishar and other civil and army officers joined hundreds of attendees to witness the grand celebration. The event concluded with the facilitation of Veer Naris, recognizing their sacrifices and immense contribution to the nation. For Parikrama, this is Anayat Ali from Kargil, Union Territory of Ladakh.
राजधानी के भारत मंडपम में चल रहे व्यापार मेले में लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है। मेले में देश विदेश के प्रदर्शकों के स्टॉलों पर लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करते नजर आ रहे हैं और इस 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस वर्ष के फोकस स्टेट झारखंड के स्टॉल पर भी लोगों की काफी भीड़ नजर आ रही है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
सप्ताह के अंत में अंतर्राष्ट्रीय मेले में लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों पर युवाओं और कॉलेज के विद्यार्थियों की भीड़ देखी जा रही है। इस महीने की 27 तारीख तक चलने वाले इस मेले में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालय के अलावा कई राज्यों के स्टॉल लगाए गए हैं। इसके अलावा मेले में चीन, मिस्र, अफगानिस्तान, ईरान, दक्षिण कोरिया के काउंटर भी हैं। इस मेले में हस्तशिल्प, स्वादिष्ट व्यंजन से जुड़े कई काउंटर भी हैं, जहां लोगों की काफी दिलचस्पी देखी जा रही है। परिक्रमा के लिए अमन यादव।
हमारे संवाददाता ने मेले में आए कुछ लोगों से भी बात की।
मेले का एक्सपीरियंस अच्छा है, लोगों को अपनी जरूरत की चीजें भी मिल जाती है और कुछ ऐसी चीजें भी मिल जाती है जो की नॉर्मली हमको अवेलेबल नहीं होती है, खासकर जो छोटे MSME उद्योग है, उन माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस है, उनके द्वारा बनाई हुई चीजें वो साल भर में एक बार हम आके ले जाते हैं और उनसे।
Yes, and now let us take a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
Today, we commemorate globally renowned Indian scientist Jagdish Chandra Bose, who died on 23rd of November 1937. A pioneer in plant physiology, radio technology, and various other scientific fields, Bose made many significant contributions to our modern understanding of the natural world. Bose's phenomenal scientific discoveries inspired the formation of modern India, has also imbued Indians with a reaffirmed identity in the fight against British imperialism.
Bose was born on the 30th of November 1858 in Munshiganj, Bengal Presidency, now in Bangladesh, to Bhagwan Chandra Bose, a civil servant who was also active in Hindu reform movements. Bose was raised in a home committed to Indian traditions and culture. His father got Bose admitted to a vernacular school as opposed to an expensive English language school to learn his own language, Bangla, and to know and understand a wide variety of people. The impact of this early life experience and contact with a range of different people stayed with Bose throughout his life and was clear in his attitude towards his work and life.
Bose's father overruled his wish to join the Indian civil services and instead sent him to England to study medicine at the University of London. However, his repeated illness kept him from completing his medical studies, and he instead pursued higher studies in natural sciences and physics. After returning to India, Bose joined the Presidency College as a professor of physics. Despite racial discrimination by British administration, he made remarkable progress in his research of remote wireless signaling. However, instead of trying to gain commercial benefit from this invention, Bose made his inventions public in order to allow others to further develop his research.
Bose made a number of pioneering discoveries in plant physiology and used his own invention, the crescograph, to measure plant response to various stimuli and thereby scientifically proved parallelism between animal and plant tissues. To facilitate his research, he constructed automatic recorders capable of registering extremely slight movements. These instruments produced some striking results, such as quivering of injured plants, which Bose interpreted as power of feeling in plants. In 1917, he founded the Bose Institute, a premier research institute of India and also one of its oldest.
While praising Jagdish Chandra Bose, Rabindranath Tagore said, "From the temple of science in the West, far across the Indus, O my friend, you have brought the garland of victory. A crater on the moon has been named in Bose's honor. We salute this great Indian."
In sports news, in wrestling, India finished the World Military Championships in Yerevan, Armenia, with a total of 7 medals, including 3 gold, 1 silver and 3 bronze yesterday.
और अब बात उन हस्तियों की जिन्होंने आज के दिन जन्म लिया या फिर आज के दिन ही इस दुनिया को अलविदा कहा.
Yes, Mudita and Roald Dahl passed away on this day in 1990. He was a British author of popular children's literature and short stories, a poet, screenwriter and a wartime fighter ace. His books have sold more than 300 million copies worldwide. He has been called one of the greatest storytellers for children of the 20th century. Dahl was born in Wales to affluent Norwegian immigrant parents and lived for most of his life in England. He served in the Royal Air Force, RAF, during the Second World War. He became a fighter pilot and subsequently an intelligence officer, rising to the rank of acting wing commander. He rose to prominence as a writer in the 1940s with works for children and for adults, and he became one of the world's best-selling authors. His awards for contribution to literature include the 1983 World Fantasy Award for Lifetime Achievement and the British Book Awards Children Author of the Year 1990. His works for children include James and the Giant Peach, Charlie and the Chocolate Factory, Matilda, The Witches, Fantastic Mr. Fox, The BFG, The Twits, George's Marvelous Medicine, and Denny, the Champion of the World. His works for older audiences include the short story collections, Tales of the Unexpected and the wonderful story of Henry Sugar and six more.
And what a fantastic writer he was, Abhishek.
Absolutely.
And today's Jayanti is the famous gayika Geeta Dutt. दिलों की गहराई तक उतर जाने वाली आवाज और गायकी का दिलकश अंदाज, ये थी गीता दत्त। 1930 में आज ही के दिन फरीदपुर में जन्मी गीता घोष रॉय चौधरी 1953 में गुरुदत्त से शादी के बाद गीता दत्त हो गई। सबसे पहले के हनुमान प्रसाद ने उन्हें भक्त प्रहलाद में गाने का मौका दिया, हालांकि उन्होंने कुछ लाइनें ही गाई थी, लेकिन इसी फिल्म में उन्हें सुनकर एसडी बर्मन ने उन्हें अपनी फिल्म दो भाई के लिए साइन किया। और अभिषेक, इस फिल्म का जो गीत था मेरा सुंदर सपना बीत गया, ये 17 साल की उम्र की लड़की ने गाया होगा, ये कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। ये गाना हिट हो गया और इस तरह हिंदी सिनेमा में उनके करियर की शुरुआत हुई। उन्होंने कई बांग्ला फिल्मों के लिए भी गाने गाए, लेकिन हिंदी गीतों के क्राफ्ट में मिठास और दर्द के साथ ही जो चुलबुलापन गीता दत्त लाई वो अनोखा था। तो ये गीत सुनिए, मेरा नाम चिन चिन चू, और इसमें गौर करिएगा मेरा उन्होंने जिस तरह से गाया है।
मेरा नाम चिंचिंचू बाबा चिंचिंचू, रात चांदनी में और तू हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम चिंचिंचू चिंचिंचू बाबा चिंचिंचू।
अभिषेक, यूं तो सभी तरह के गीत उन्होंने बखूबी गाए, लेकिन जब वो सैड सॉन्ग्स गाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया जहान का दर्द उस आवाज में समा गया है। फिल्म साहब बीवी और गुलाम में छोटी बहू का दर्द, शिकायत, पति की बेवफाई और अकेलेपन की पीड़ा को गीता की आवाज ने पर्दे पर ऐसा उतारा कि मीना अमर हो गई।
न जाओ सैया छुड़ा के मैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी रो पड़ूंगी।
अपनी निजी जिंदगी के दुखों और 1964 में गुरुदत्त की मौत ने उन्हें तोड़ दिया था, और वक्त के ये सितम ही थे कि केवल 41 साल की उम्र में ऐसी हुनरमंद गायिका ने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन फनकार कहीं जाते नहीं, अपने गीतों में गीता दत्त हमेशा मौजूद रहेंगी।
Yes, and Harjit Singh Baba Sehgal was born on this day as an Indian rapper. He is widely acclaimed to be the first Indian rapper. He is also involved in various other areas of the entertainment industry and works in several different languages media. Let's listen in to a hit song of his.
मैं फाइव स्टार होटल पहली बार गया, मैंने देखा पानी से भरा स्विमिंग पूल आया, मैनेजर बोला बैठिए प्लीज सर 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 आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ, कुछ फरमाइए बोलिए क्या आपको चाहिए। ठंडा ठंडा पानी ठंडा ठंडा पानी।
और आज हिंदी और उर्दू के मशहूर कथाकार कृष्णचंद्र की जयंती है। उन्होंने एक गधे की आत्मकथा, रेत का महल, कागज की नाव, पराजय सहित दर्जनों उपन्यास और 500 से अधिक कहानियां लिखी। रेखाचित्र, निबंध, टिप्पणियां और रिपोर्टाज भी उन्होंने लिखे। उनकी रचनाओं के अनुवाद दुनिया के विभिन्न भाषाओं में हो चुके हैं। फिल्मों के लिए भी उन्होंने कहानियां और संवाद लिखे। वे ऑल इंडिया रेडियो से भी बतौर प्रोग्राम असिस्टेंट जुड़े रहे और 1969 में उनको पद्मभूषण से सम्मानित किया गया। 2017 में उनकी याद में एक डाक टिकट भी जारी किया गया।
Yes, and Nirad Chandra Chaudhary was born on this day. In 1990, Oxford University awarded Chaudhary, by then a long-time resident of the city of Oxford, an honorary degree in letters. In 1992, he was made an honorary commander of the Order of the British Empire. His autobiography of an unknown Indian, published in 1951, put him on the long list of great Indian writers. Chaudhary had said that the autobiography of an unknown Indian is more of an exercise in descriptive anthology than autobiography. At the age of 57 in 1955, for the first time, Chaudhary went abroad. After coming back, he wrote A Passage to England in 1959. In this book, he talked about his visit of 5 weeks to England and more briefly about his 2 weeks in Paris and 1 week in Rome.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुदिता और अभिषेक को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर। नमस्कार।
नमस्कार।